1930 हिजरी कमरी में उमवी दौर के अख्ताम के मौके पर बैतुल मुकद्दस में एक भयानक जलजला आया, जिसमें मस्जिद कुब्बतुस सखरा के अलावा इसके सारे हिस्से तबाह हो गए। 140 हिजरी कमरी में अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने फरीज हज की अदायगी से वापसी पर बैतुल मुकद्दस का दौरा किया और मस्जिद की तामीर नौ का हुक्म दिया। 154 हिजरी कमरी में मस्जिद की तामीर नौ का अमल मुकम्मल हुआ। फिर मंसूर ने दूसरे साल भी इस इलाके का दौरा किया। 4 बरस के बाद बैतुल मुकद्दस में एक और तबाहकुन जलजला आया। इस मरतबा 160 हिजरी कमरी में खलीफा महदी ने बैतुल मुकद्दस का दौरा करने के बाद मस्जिद की तामीर नौ की हिदायत जारी की। मस्जिद की तामीर नौ में 3 साल का अरसा लगा। मस्जिद की तामीर नौ के बाद खलीफा महदी ने मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुकद्दस का दोबारा दौरा किया। तामीर नौ के दौरान बैतुस सलाता के बाज सुतून हटा दिए गए। मस्जिद की छत भी कुछ गुंबद नुमा यानी उठी हुई बनाई गई और इसके बालाई हिस्से में नूर और रोशनी के लिए खिड़कियां भी लगाई गईं। शीशे की चादरों से पोशीदा लकड़ी के गुंबद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों को चूने से मुजयन किया गया। मस्जिदुल अक्सा की तामीर नौ में जो तब्दीली की गई वो कुब्बतुस सखरा की इंजीनियरिंग के जेर असर थी। तीसरी बार के जलजले में मस्जिद के बाज़ हिस्से तबाह हो गए और इस बार खलीफा मामून ने मस्जिद की तामीर नौ के अहकाम जारी किए और इसके अखराजात गवर्नरों, हुक्मरानों और कमांडरों पर तकसीम कर दिए गए। 210 हिजरी कमरी में सिपाहे मामून के कमांडर अब्दुल्ला बिन ताहिर ने मस्जिद की तामीर नौ की। फिर 215 हिजरी कमरी में बैतुल मुकद्दस के दौरे और मुआयने के लिए मामून इस इलाके के लिए रवाना हुआ और कुब्बतुस सखरा की मरम्मत किए जाने का हुक्म दिया। इस गुंबद को नीले रंग पर तलाई नगीनों और ऐसी टाइल से मुजयन किया गया जिन पर कुरानी आयात तहरीर थी। अलावाजी तामीरों से मुतालिक खलीफा का हुक्म भी लिखा हुआ था। अब्बासी दौर 5 अशरों से जायद अरसे तक जारी रहा और इस मुद्दत के दौरान दारुल खिलाफा यानी बगदाद में काफी तब्दीलियां रूनुमा हुई। बेशतर मुहक्किकीन ने अब्बासी अव्वल और दुवम के जमाने को अलग अलग अदवार से ताबीर किया है। ये बात वाज रहे कि फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस भी अब्बासी दौर की तब्दीलियों के जेर असर थे। नई इंतजामिया की तश्कीलात के साथ रामुल्ला फलस्तीन का मरकज और बैतुल मुकद्दस एक ऐसे इलाके का दरवाजा बना जो एक रियासत का हामिल था। अब्बासी खुलफा इस बात के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद थे कि हुकूमत फलस्तीन को कोई अब्बासी हुक्मरान ही संभाले, मगर बेशतर अब्बासी हुक्मरान दमिश्क में और मिस्र में इक्तदार में रहे। 264 हिजरी कमरी में आले तालून ने फलस्तीन पर तसल्लुत जमा लिया और इस इलाके को मिस्र में बरसर इक्तदार तालूनी हुकूमत का हिस्सा मुतारिफ कराया। आहले तालून का सरकर्दा लीडर खमारका ज्यादातर फलस्तीनियों में रहता था, मगर बगदाद हुकूमत के मरकज और आहले तालून के दरमियान सुलह हो जाने के बाद तय पाया कि वो फलस्तीन में ही बाकी रहे। 292 हिजरी कमरी में जब दारुल खिलाफा ने फलस्तीन और मिस्र को आहले तालून के तसल्लुस से आजाद कराने का फैसला किया तो फलस्तीन खिलाफत के बराह रास्त मरकज के तौर पर अपनी साबका हालत पर वापस आ गया और इस इलाके के हुक्मरान भी इसी इलाके से मुतय्यन होते थे। यह सूरत हाल 323 हिजरी कमरी यानी खानदान अखसंदी की हुकूमत के तश्कील तक यूं ही जारी रही। मिस्र और पूरे जनूबी शाम पर इसी खानदान की हुकूमत थी और 35 बरसों तक हुकूमत बाकी रही। शुरू शुरू में सूरत हाल काफी बेहतर थी, मगर बाद में बहरानी हो गई। यहां तक कि फलस्तीनी शहरों और बैतुल मुकद्दस में खुद मुख्तारी की दिफाई यूनिटें कायम कर दी गईं। ये यूनिटें दो सरबराहों, कवानीन व ज़वाबित, टैक्सों की वसूली اور سیاسی مداخلت کی حامل تھیں۔ آل اشخید حکومت کا دور ختم ہو گیا۔ عباسی حکومت کا پہلا دور اور بیت المقدس و فلسطین پر ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر فاطمیین برسر اقتدار آ رہے ہیں۔